शैतान की मेहनत का जो जिंदगी पर मुसलमान रहा हो, ईमान रहा हो, सरकार की तरफ से इसका नाम positiva buscando solo la verdad y se hace de camino.
ये सारे हालात हमारे सामने
ketika Nabi datang sallallahu alaihi wasallam di taraf dia jawaban lagi dia sahih karena dia lagi ke ni ke ni dan sahabatnya sudah mereka
फिर अल्लाह की तरफ से आदमी के अंदर वो इस्तेदा पैदा होती है कि आदमी हर हाल में अल्लाह के अहकाम और नबी के तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारता है। जब अंदर यकीन मजबूत हो जाता है अल्लाह की जात अली का यकीन के करने धरने वाला अल्लाह है, नफा और नुकसान, शिफा और बीमारी, जिंदगी और मौत, हलाकत और हिफाजत, इज्जत और जिल्लत, कामयाबी और नाकामी, सब कुछ अल्लाह ही के करते गुजरते हैं। जब आदमी के दिल का विज्ञान और दिल का अंदर का यकीन हो जाता है कि सब कुछ अल्लाह ही के कब्जे में करते हैं, तो फिर आदमी की तबीयत खुद इस बात को पर हमला हो जाती है, फिर इसी को मनाने में और इसी को राजी करने में मेरी दुनिया सब की खैर है। कि जब उसी के कब्जे में सब कुछ है तो इसी को राजी करने में मेरी भलाई है। कि जब यह अंतर पैदा होता है तो फिर आदमी कदम उठाने से पहले सोचता है कि जिस खाली को मालिक के कब्जे मेरी कामयाबी और नाकामी, मेरी इज्जत और जिल्लत, मेरी राहत और तकलीफ है, ये मेरा कदम का उठाना मेरे अल्लाह को राजी करेगा, नाराज करेगा, ईमान इसको मजबूर करेगा। जबान बोलने से पहले सोचेगी कि मेरा ये बोलना मेरे अल्लाह को राजी करेगा, नाराज करेगा, मेरी आंख को बनाएगा, बिगाड़ेगा। सुनने से पहले आदमी सोचेगा मेरा ये सुनना मेरे अल्लाह को राजी करेगा, नाराज करेगा। कमाने से पहले सोचेगा कि मेरा ये कमाना मेरे अल्लाह को राजी करेगा, नाराज करेगा। खर्च करने से पहले सोचेगा मेरा ये खर्च करना मेरे अल्लाह को राजी करेगा, नाराज करेगा। कदम कदम पर जिंदगी के हर मोड़ पर ईमान इसकी रहबरी करेगा कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे चलना कैसे नहीं चलना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना। जिंदगी के हर मोड़ पर ईमान इसकी रहबरी करेगा, इस्तेदाद पैदा होगी ईमान यकीन के बदले से। इसलिए चाचा महीने मांगे जा रहे, चिल्ले मांगे जा रहे, महीने के दिन भी मांगे जा रहे, मकामी काम की एहतमाम मांगा जा रहा, ये भी जो है घर छुड़वाना मकसूद नहीं, कारोबार छुड़वाना मकसूद नहीं। कि आज हमारे माहौल में जो है दुनिया की मेहनत है, सुबह से शाम तक आदमी की जान नाल उतरा तो सलाहियतें, आदमी का बोलना सुनना सोचना, ये सब कुछ दुनिया के लिए है, जिसके नतीजे में ये दुनिया दिलों में पेवस्त हो गई हो, ये दुनिया की अजमत और बड़ाई, दुनिया की मोहब्बत, उसका यकीन यूं ही हमारे दिलों में नहीं आ गया, इस पर हमारी जाने लगी है, मान लगे हैं, औकात लगे हैं, सलाहियतें लगी है, इसी की मुशाकों में हमने अपने आप को रखा है। आदमी सुबह उठता है तो दुनिया की फिक्रों के साथ सुबह करता है, दिन भर अपनी जान माल उठा तो सलाहियत दुनिया पर लगाता है, रात को सोता है तो दुनिया की फिक्रों के साथ सोता है, खा भी देता है तो दुनिया के 24 घंटे का चक्कर दुनिया दुनिया है। और आज वो भी माहौल बना हुआ है कि जहां आदमी बैठे, जहां चले, जहां खड़ा रहे, दुनिया ही दुनिया सुनने को मिलती है, जिसके नतीजे में ये दुनिया दिलों में ऐसी घर कर चुकी और ऐसी अजमत और बड़ाई और ऐसी मोहब्बत दुनिया की हमारे दिलों में आ चुकी कि अब इसमें अल्लाह की अजमत और बड़ाई और अल्लाह की मोहब्बत और उसके यकीन की गुंजाइश नहीं है। इतनी बेवस हो गई दुनिया, इसलिए दुनिया हमारे आमाल की मालिक बन रही है। ये दुनिया दिलों से निकले, अब ये कैसे निकले? एक आदमी जो है तालाब में डूब रहा है और उसका पानी उसके अंदर जाकर उसकी जान को खतरा बन रहा है। जब तक उसके अंदर का पानी नहीं निकलेगा वहां तक उसकी जान खतरे से बाहर नहीं होगी। होगी भाई बात, अंदर पानी चला गया है उसकी जान को खतरा है, जब तक उसके अंदर का पानी नहीं निकलेगा वहां तक उसकी जान खतरे से बाहर नहीं होगी। अब अंदर का पानी निकालना है तालाब में रखकर बैठा भाई उल्टा सुलाए
एक आदमी नाला में डूब रहा है और उसका पानी उसके अंदर जाकर उसकी जान को खतरा बन रहा है, तो क्या करेंगे? नाला में रकम पेट दबाए, उसके अंदर का पानी निकालना है तो पहले उसे तालाब में से निकालना हो कि जब तक उसको उसके तालाब में से निकालेंगे नहीं, वहां तक उसके अंदर का पानी उसके अंदर से निकलेगा नहीं, उसकी जान खतरे से बाहर नहीं होगी। आज हमें दुनिया के माहौल में, दुनिया के असबाब के तालाब में हमारी रात, हमारे दिन, हमारी जवानी, हमारा बुढ़ापा, ये दुनिया ही पर सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है, जिसके नतीजे में ये दुनिया हमारे दिलों में पेवस्त होकर हमारे ईमान के लिए खतरा बन गई, हमारे आखिर के लिए खतरा बन गई। इस दुनिया को निकालना दिलों से, क्योंकि जब तक दुनिया दिलों से निकलेगी नहीं, वहां तक अल्लाह दिलों में आवेगा नहीं। प्याले में पानी भरा हुआ है, इसमें दूध भरना चाहते हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा? प्याले को पानी से खाली करना पड़ेगा। जब तक प्याले को पानी से खाली नहीं करेंगे, वहां तक उसमें दूध नहीं भर सकते। जिस दिल में दुनिया की अस्मत बढ़ी हुई है, दुनिया की मोहब्बत बढ़ी हुई है, दुनिया का यकीन बढ़ा हुआ है, जब तक ये दुनिया दिलों से निकलती नहीं, वहां तक अल्लाह की अस्मत और बढ़ाई, अल्लाह की मोहब्बत, उसका यकीन दिलों में आवेगा नहीं। पहले दिलों को दुनिया से खाली करना है और दिलों से दुनिया को निकालना, और दुनिया को दिलों से निकालने के लिए हमारे बड़े फरमाते हैं कि ईमान वाला अपनी दुनिया को दिलों से निकालना चाहता है तो यह दुनिया से निकले। चार चार महीने की रिश्वत से, जिन्हों की रिश्वत से, तीन तीन दिन की रिश्वत से, मकामी काम के ढाई घंटे और आठ घंटे की रिश्वत से, गश्तों की रिश्वत से, जब ईमान वाला बार बार अपनी दुनिया को छोड़ेगा तो ये दुनिया दिलों से निकलेगी, ये दुनिया दिलों से निकलेगी। इसलिए दुनिया की चीज जो है वो ईमान को बनाना, ईमान की मेहनत में अपने आप को लगाना, अपने ईमान यकीन का बनाना, ये बुनियादी जरूरत है। अल्लाह ने ईमान वाले को, मुसलमान को जो जान माल को सलाहियत दी है, ये सिर्फ दुनिया कमाने के लिए और दुनिया की जरूरतें पूरी करने के लिए ये दी थी। ये दुनिया तो मौत के झंडे पर छूटेगी, आप ही दुनिया की मेहनत करते करते करोड़पति बन जाए, एयर कंडीशन बंगले बना लेवे, लेकिन ये सारी की सारी दुनिया जहां मौत आएगी ये सब कुछ छूट जाएगा। असल जो ईमान और अमल कब्र में साथ आएंगे, ईमान अमल की मेहनत साथ में आएगी, उस पर आदमी के आखिरत की जो है बनने और बिगड़ने के फैसले होंगे। मौत कब आ जाए ये जरूरी नहीं, अभी जवान है तो बूढ़े होकर मरेंगे, या अभी बीमार जो तंदुरुस्त है बीमार होकर मरेंगे, मौत के लिए बुढ़ापा बीमार शर्त नहीं। जवान को जवानी में आ सकती है और तंदुरुस्त को तंदुरुस्ती में आ सकती है, पता नहीं कब मौत आ जाए, आपकी कब्र के हवाले हो जाए, आपकी अपनी मौत और आखिरत को सामने रखे। ये दुनिया के लिए दिन पर टकना और इस पर अपनी जवानी को लगा देना, अपनी तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल कर देना और अपनी जान माल को इसी पर खपाना लगाना, ये कहा कि मुझे साथ दे, मौत आएगी, ये दुनिया साथ छोड़ देगी, आदमी कब्र में अकेला रह जाएगा, ये दुनिया वाले दफन करके वापस हो जाएंगे और दो चार दिन, दो चार महीने रोज होकर भूल जाएंगे और रोएंगे तो हमारे लिए रोएंगे कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुम्हारा कब्र में क्या होगा, तुमने ईमान नहीं बनाया, तुम्हारा कब्र में क्या होगा। रोने वाले दुनिया में अपने लिए रोएंगे कि तुम चले गए, हमारा क्या होगा। और हश्र के मैदान में एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, तो एक नेकी देने को तैयार नहीं होगा, एक नेकी सब भागे। इसलिए समझदारी अकलमंदी का तकाजा यह है कि आदमी अपनी मौत से पहले पहले अपनी कब्र आफत को बनावे, अपने ईमान और अमल को बनावे, अल्लाह से अपने ताल्लुक को हासिल करें, अल्लाह की मारिफत और पहचान को हासिल करें, अल्लाह की जात अली का यकीन अपने दिल में पैदा करें और अल्लाह के अहकाम पर और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने के अपने अंदर इस्तेदाद पैदा करें और अपनी मौत से पहले पहले अपनी कब्र आफत को बनावे।
वरना ईमान अमल बनाए बगैर अल्लाह का कानून हासिल किए बगैर सिर्फ दुनिया पर मेहनत करते करते गफलत की जिंदगी गुजारते गुजारते आदमी अगर मर गया कब्र के हवाले हो गया, कब्र में जाकर अल्लाह से कहेगा अल्लाह जन्नत देख ली, जहन्नम देख ली, अजाब देख लिया, सवाब देख लिया, सब कुछ समझ में आ गया, अब दोबारा दुनिया में अब भेज दे, मैं दीदार करके आऊँ, ईमान और अमल को बना कर आऊँ, आखिरत की तैयारी करके आऊँ। लेकिन मरने के बाद किसी को एक बड़ा सवाल कहने का मौका नहीं मिले। आदमी का कब्र में जाकर खून के आंसू होना ये जो है इसको काम नहीं देगा। इसलिए मौत से पहले पहले हमारे पास मौका है कि हम अपने ईमान यकीन को बनाएं, अपने ईमान को मजबूत करें। ईमान के एतबार से अल्लाह ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को पूरा करें। ईमान में हमने जो कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमने एक तरफ तो अल्लाह की रुबूबियत का इकरार किया है, अल्लाह तू मेरा माबूद रब है, मैं तेरी ही दाद और इबादत करूंगा, और ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किया है, आप सलातन की रिसालत और नबूवत का इकरार किया है। तो इस एतबार से अपनी जिम्मेदारी को समझना कि मैं एक तरफ अल्लाह का बंदा हूँ, दूसरी तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, तो उस एतबार से मेरी क्या जिम्मेदारी। जैसे एक खेत वाला खेत की लाइन से अपनी जिम्मेदारी को समझता है, दुकान वाला दुकान की लाइन से अपनी जिम्मेदारी के एहसास के साथ चल रहा है, और एक शादीशुदा आदमी शौहर होने के एहसास से कि मैं बीवी का शौहर हूँ, तो इस एतबार से मेरी क्या जिम्मेदारी है, इस एहसास के साथ चल रहा है। एक औलाद का बाप जो है बाप होने की हैसियत से कि मैं औलाद का बाप हूँ तो मेरी क्या जिम्मेदारी है, इस एहसास के साथ दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है। तो जहाँ दुनिया की जिम्मेदारियों के एहसास के साथ हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ ईमान के एतबार से अपनी जिम्मेदारी को समझना कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो अल्लाह के बंदे होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हूँ तो उस एतबार से मेरी किसी क्या जिम्मेदारी है। अल्लाह का बंदा होने के नाते अल्लाह की बंदगी को अख्तियार करना, अपनी आंखों में, अपने कानों में, अपनी जबान में, अपने दिलो दिमाग में, अपनी नकलो हरकत में, अपनी कमाई और खर्च में, अपनी शादी और जो है कमी और खुशी में, अपनी जवान और बुढ़ापे में, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती और बीमारी में, ये अल्लाह के बंदा बनकर जिंदगी गुजार। मुसलमान आजाद नहीं है, हमने कलमे में अल्लाह की गुलामी का इकरार किया, हम आजाद नहीं है कि जो चाहे लिखें, जो चाहे सुने, जो चाहे बोले, जो चाहे लोगों के बारे में सोचे और दुआएं करें, और जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, हम आजाद नहीं है, हम गुलाम हैं, बंदे हैं। अगर हमने इस मुख्तसर जिंदगी में अल्लाह के बंदे बनकर और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपने आप को अल्लाह का बंदा बनकर जिंदगी हमने गुजारी, तो आखिरत में हमें मनचाही मिलेगी, जी चाही मिलेगी हमेशा। और अगर इस मुख्तसर जिंदगी को हमने मनमानी में गुजारा, जो जीने आया देखा, जो जीने आया सुना, जो जीने आया बोले, जैसे जीने आया जिंदगी गुजारी, जो जीने आया कमाया, अगर इस तरह हमने अपनी जिंदगी को गुजारा, तो फिर इस जिंदगी को गुजर जाएगा। इस जिंदगी की मिसाल तो बर्फ की तरह है, बर्फ का काम है पिघलना, अगर उसको पानी में रखा जाए तब भी पिघलेगा, और रास्ते पर रखा जाए तब भी पिघलेगा, लेकिन पिघलने पिघलने में फर्क है। अगर रास्ते पर पिघलेगा कीचड़ बनेगा, लोग गिरेंगे, लोगों के दिलों से बदबुआएं निकलेंगी, और अगर यही बर्फ पानी में पिघलता है, पानी ठंडा होगा, लोग पिएंगे, लोगों की दुआएं मिलेंगी। ये जिंदगी का काम है गुजरना, ये तो गुजर जाएगा, चाहे आदमी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारे, अपनी मर्जी से गुजारे, या अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारे, ये गुजरने वाली चीज है, ये गुजर जाएगी। लेकिन अच्छी जिंदगी गुजारना, अल्लाह के अहकाम वाली जिंदगी गुजारना, नबी के तरीकों वाली जिंदगी गुजारना, दीन वाली जिंदगी गुजारना, ये तो जो है आदमी को अपनी जात से भी फायदा देता है, और उसके जरिए हजारों लाखों को फायदा पहुंचता है। इसमें दुनिया का भी बनना है, आखिरत का भी बनना है। और अगर आदमी ने अपनी मर्जी, अल्लाह की मर्जी जो है, आदमी अल्लाह की मर्जी से हटकर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता है, तो ये इसका अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना उसके लिए भी नुकसानदेह है, और दूसरों के लिए भी नुकसान का जरिया बनता है, और इसकी दुनिया भी बिगड़ती, आखिर भी बिगड़ती है। इसलिए अल्लाह के बंदे होने के नाते अल्लाह का बंदा बनकर اللہ کے احکام پر چلنا، اللہ کے احکام کو اختیار کرنا، طبیعت اللہ کے احکام والی بنانا، اعمال والی بنانا، اعمال سے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، زندگیوں میں اللہ کے احکام کو زندہ کرنا، یہ اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا ضروری ہے. اور جس طرح اللہ کے بندے ہیں ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رسوم پر ہمیں ایمان لانا ضروری، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دنیا میں بھیجے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، اب کوئی دنیا میں نبی نہیں آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اب امتی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو خود کی زندگی میں زندہ کرتے ہوئے یہ اللہ کے احکام اور حضور کے طریقے گھر گھر میں زندہ ہو جاوے، ہر پد میں زندہ ہو جاوے، پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جاوے. اس لیے حضور والی فکر کو اپنی فکر بنانا، حضور والے درد کو اپنا درد بنانا، حضور والے غم کو اپنا غم بنانا، حضور والی محنت کو اپنی محنت بنانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ذمہ داری ہے. ہم کو اللہ نے یوں ہی دنیا میں نہیں بھیج دیا کہ ہم کما لیں، کھا لیں، ضرورتیں پوری کر لیں، موت آوے مر جاوے، معاملہ ختم ہو جائے. ایک ذمہ داری ہم کو اللہ نے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، لیکن ساتھ یہ فیصلہ کیا حضور والے دین و شریعت کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے. اب قیامت تک حضور والے دین و شریعت کو زندہ رکھنے اور زندہ کرنے کے لیے سبب کے درجے میں محنت کے لیے اللہ نے سنت کا انتخاب کیا ہے کہ آپ دنیا میں نبی تو نہیں آئیں گے، نبیوں والا کام، نبیوں والی محنت اس امت کے ذمے ہے. ہمارے ذمے دنیا کے ایک ایک انسان تک اللہ کی بات کو پہنچانا، اللہ کے دین کو پہنچانا، یہ ہمارے ذمے ہے. یہ دنیا میں بسنے والے کروڑوں کی تعداد میں انسان بغیر کلمے کے اور بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو کر ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. مسلمان کو اللہ نے ذمہ داری دی تھی، ایمان والے کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ خود بھی اللہ کے دین پر زندگی گزارے، ایمان اور اعمال کے مطابق زندگی گزارے، اور دنیا کے بسنے والے انسانوں تک یہ اللہ کے کلمے کو لے کر پہنچے، اللہ کی بات کو لے کر پہنچے، تاکہ انسانیت ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے اور ہمیشہ کی جنت میں چلی جائے. مسلمان اپنی ذمہ داری کو چھوڑا ہے جس کے نتیجے میں یہ ذلت و خواری کی زندگی گزار رہا ہے، ذلت و خواری کی زندگی گزار رہا ہے. یہ دنیا میں پریشان ہے اس لیے پریشان نہیں کہ اس کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، اس لیے پریشان نہیں. مسلمان کے پاس حکومتیں ہیں، فوج و لشکر ہے، وہ پیٹرول کے کنویں ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، موزے اور کرسیاں ہیں، سب کچھ ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان دنیا میں جو پریشان ہو رہا ہے اور جو ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس نے اپنے مقصد حیات کو چھوڑا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو چھوڑا ہے. جس کام کے لیے دنیا میں مسلمان کو پیدا کیا گیا تھا، آج وہ مسلمان یہ اپنے کام کو چھوڑ کر غیروں کی طرح دنیا کمانا اور دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا امن خوف سے بدلا ہے، اس کی ناکامی، اس کی کامیابی ناکامی سے بدلی ہے، اس کی عزت عزت سے بدلی ہے. وہ نہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو بنایا، اعلیٰ کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنا اور اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا، جب ان کی زندگی کا مقصد تھا اسی کے لیے ان کا جینا مرنا، اسی کے لیے ان کا کمانا اور کھانا، اسی کے لیے ان کی مالداری اور غربت، اسی کے لیے ان کی صحت اور بیماری، سب کچھ جب اسی کے لیے تھا تو اللہ نے ان کو ایسا سربلند کیا، عزت کے مینار کو دکھایا، قوموں کا امام بنایا اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں ان کو قدموں میں ڈالا. یہ اپنے مقصد پر تھے، اپنے مقصد پر تھے، ان کی جان مال اور کام و صلاحیتیں اپنے ان کے مقصد پر لگ رہی تھی، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی. مالدار تھے تو مالداری انہوں نے اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کیا، مالداری اور مشغولی دین کے تقاضوں میں رکاوٹ نہیں بنی. غریب غربت میں اللہ کے دین کا کام کرتا رہا، ان کی غربت یہ جو ہے دین کے کام میں رکاوٹ نہیں بنی. جوانوں کی جوانی رکاوٹ نہیں بنی، بوڑھوں کا بڑھاپا یہ جو رکاوٹ نہیں بنی، بیماروں کی بیماری یہ رکاوٹ نہیں بنی. اگر گھر میں جو ہے کپڑے نہیں ہیں تو ایک چادر سے یہ اللہ کے دین کا تقاضا پورا کر رہے ہیں، अगर इनके पास पहनने के लिए जूते नहीं है तो ये चीजें बार बार अल्लाह के दिन का तकाजा पूरा कर रहे हैं। अगर इनके पास सवारियां नहीं है तो नौबत नौबत ये सवार एक एक सवारी पर दस दस ये सफर कर रहे हैं और अल्लाह के दिन का तकाजा पूरा कर रहे हैं। दुनिया की वो चीज माँ बाप की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, दुनिया की मजबूरियां और फुर्सत और जो मजबूरियां मालदारी गरीबी फाका कशी ये कुछ भी अल्लाह के दीन के राह में इनके रुकावट नहीं बना, क्योंकि इन्होंने दुनिया को मकसद बंद नहीं बनाया था। अब अल्लाह के दीन को दुनिया में जिंदा करना, अल्लाह के कलमे को दुनिया में बुलंद करना और अपनी आखिरत बनाना इन्होंने जिंदगी का मकसद बनाया था। इसलिए हर हाल में अल्लाह के दीन के हर तकाजे को पूरा किया और कोई चीज इनके लिए रुकावट नहीं हुई, कोई चीज रुकावट नहीं हुई। फिर अल्लाह ने जो है इनके लिए उत्थान के दरवाजे खोले और दुनिया की हर चीज को इनके लिए मुसफर किया। हर एक परी की चली, हवा परी की चली, दरियाओं परी की चली, दरिंदों परी की चली और आज मुसलमान ने अल्लाह के दीन को, दीन की मेहनत को, अपनी जिंदगी के मकसद को क्या छोड़ा, दुनिया की चीजों पर और मखलूकात पर क्या चलती इसकी अपनी जात पर नहीं चलती। ये मीठी नींद रात को सो रहा है, नफ्स पर नहीं चलती, यही मीठी नींद छोड़कर अल्लाह के हुक्म को पूरा करे, फजर की नमाज जमात से पढ़े, इसकी नफ्स पर नहीं चलती, इसकी अपनी बीवी बच्चों पर नहीं चलती, दुनिया के और मखलूकात पर तो क्या चलती है, इसकी अपनी जात पर नहीं चलती। इतना बेबस हो गया, इतना कमजोर हो गया और फिर भी इस कमजोरी का एहसास नहीं है कि हमने अपनी राह को भुलाया है, इसलिए हम दुनिया में परेशान है। बारह मिसाल सुनते हैं, बेपंखा है, पंखे का काम है हवा देना, जब तक ये हवा देता रहता है अपने मकसद को रहता है, इसकी जो साफ सफाई होती है, इसकी हिफाजत होती है और जब ये अपने मकसद को छोड़ देता है तो उसको उसके मकाम से उतारा जाता है, उसको रिपेयर किया जाता है। अगर रिपेयर होने के बाद अपने काम पर आ गया तो भी उसको उसका मकाम मिल जाता है और अगर रिपेयर करने के बाद भी रिपेयर नहीं हुआ, अपने मकसद पर नहीं आया तो फिर एक कबाड़ी के हवाले होता है। भैंस नाम है और दूध देना उसका काम है, जब तक ये दूध देती रहती है मालिक उसकी गर्मी ठंडी का, बीमारी का इलाज का फिक्र करता है और जो है उसकी धूप और छांव का इलाज फिक्र करता है और उसको वक्त पर खाना खिलाता है, सब कुछ उसकी फिक्र होती है। और जब भैंस अपना मकसद छोड़ देती है तो फिर उसको कसाईयों के हवाले किया जाता है। जब तक मुसलमान जो है अपने मकसद पर था, अल्लाह ने उसको इज्जत के मीनार पर बिठाया, कौमों का इमाम बनाया था और जब से मुसलमान ने अपनी जिंदगी का मकसद छोड़ा है, ये जिंदगी तो खाली की जिंदगी गुजार रहा है, ये गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, ये मक्खियों और मच्छरों की तरह मारा जा रहा है, ये घास के तिनकों की तरह जलाया जा रहा है, इसका कोई पुरसा नहीं हाल, इसका कोई पुरसा नहीं हाल। वजह क्या है, उम्मत ने मकसद हयात को छोड़ा है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने मुसलमान को जान माल और कर्ज सलाह दी थी, इससे अपने मकसद से हटाकर ये सिर्फ दुनिया कमाने और दुनिया की जरूरत पूरी करने में अपने आप को लगाए रखा है, इसलिए जो है ये दुनिया में परेशान हो रहा। अब दोबारा ये उम्मत अपने मकसद हयात पर खड़ी हो जाए, इसके लिए अल्लाह ने उन्हीं भी अंदाज में पूरी दुनिया में इस दावत और तबलीग की मेहनत को जिंदा फरमाया कि अल्लाह ताला दोबारा इस उम्मत को संभाला देना चाहते, इस उम्मत को इज्जत के दिन दिखाना चाहते, इस उम्मत को अपने मकसद हयात पर खड़ा करना चाहते, इसलिए उन्होंने अल्लाह ने पूरी दुनिया में अल्लाह ने इस मुबारक मेहनत को चलाकर हमें मौका दे रहा है संभलने का कि हम अपनी जिंदगी के मकसद पर खड़े हो जाए, हम अपने जिंदगी के मकसद पर आ जाए। इसके लिए अल्लाह ने मौका दिया हमें कि हम इस काम को अपनी जिंदगी का मकसद बना, इसको होड़ना पुछवाना बना, इसके लिए अल्लाह के दीन के लिए हम अपने औकात को खारिज करें, अपनी जान और माल की कुर्बानी, जब तक कुर्बानी जिंदगी में जिंदा नहीं होती वहां तक ईमान और अमल की हकीकत और जिंदगी का मकसद समझ नहीं आता। चारों तरफ जैसे मैंने भी कहा दुनियादारी का माहौल है, दुनिया को कहना सुनना, दुनिया को सोचना और दुनिया पर जान और माल लगाना, जिसके नतीजे में दुनिया के नफे नुकसान तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के अहकाम पर, नबी के तरीकों पर चलने का क्या नफा है और अल्लाह के दीन को छोड़कर जिंदगी गुजारने में क्या नुकसान है और अपने मकसद हयात से हटकर जिंदगी गुजारने का क्या नुकसान है। ये तो जब आदमी कुर्बानी देता है, अल्लाह के रास्ते में निकलता है, चार चार महीने मस्जिद वाले माहौल में जब ये अल्लाह के दीन की दावत में, तालीम और ताल्लुक में, और जिक्र इबादत में, खिदमत में अपने आप को मशगूल करता है, तो फिर दिल के आदमी की कैफियत बनती है और आदमी को एहसास पैदा हो रहा है कि अल्लाह ने दुनिया में मुझे क्यों भेजा था, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इसका आदमी को एहसास पैदा होता है। इसलिए चाचा बहने की कुर्बानी मांगी जा रही है, ये मामूली नहीं है। अगर हमने इस जमाने में भी अगर इस तरह कुर्बानी दे डाली हमने और चाचा बहने अल्लाह के रास्ते में निकल गए और वहां जाकर हमने जैसे हमारे लोगों की मंशा है उस मुताबिक अपने औकात को गुजारा, खाली निकल जाना काफी नहीं है, ईमान के बनाने के लिए, अमान को बनाने के लिए और दीन की मेहनत को सीखने और समझने के लिए खाली निकल जाना काफी नहीं है, बल्कि निकलने के बाद हम लोगों की मंशा के मुताबिक अपने औकात को लगाना, अमीर की इताअत करना, मस्जिद वाले माहौल में रहना और जितने इज्तिमाई इंफिरादी अमाल बताए जाते हैं उस मुताबिक अपने औकात को गुजारना, इसमें तासीर है जिंदगी को बदलने की, सोच को बदलने की, फिक्र को बदलने की, जज्बात के बदलने की, यकीन के बदलने की, एक अल्लाह ने तासीर रखी नामाल। अगर आदमी सही फिक्र के साथ बड़ों की मंशा के मुताबिक अगर ये 4 महीने लगाता है अल्लाह के रास्ते में, तो ये 4 महीने लगाना इसकी सोच और फिक्र को बदल देता है, इसके यकीन को बदल देता है, इसी जान माल के इस्तेमाल को बदल देता है, जिंदगी के पूरे रूप को बदल देता है, और ये फिर खुद नहीं बदलता बल्कि हजारों और लाखों के बदलने का जरिया बन जाता है। इसलिए बराए निकलना निकलना नहीं है बल्कि निकलकर हमें सही वक्त लगाना ये, और फिर आदमी अगर हर साल भी 4 महीने लगाता है तो ये 8 महीने घर पर रहता है, साल का चूल्हा लगाता है तो 11.5 महीने घर पर रहता है, ज्यादा वक्त हमारा मकाम पर होता है तो 4 महीने चूल्हे लगाने के बाद आदमी मकामी काम एहतमाम और पाबंदी के साथ करे। ये जो मस्जिद जमात हमारे बड़ों की तरफ से हमें कहा जा रहा है, हमारे बड़े फरमाए ये मस्जिद जमात पूरी उम्मत की तरबियत का निजाम है और अल्लाह ने इसमें कौमों की हिदायत छुपाई, हमें तासीर है यकीनों के बदलने की, माहौल के बदलने की, जिंदगियों के बदलने की, लेकिन शर्त है जैसे कहा जा रहा है हमारे बड़ों की तरफ से उस मुताबिक किया जाए तो फिर ये अपनी तासीर जाहिर करता है। ये नबियों वाला काम है, नबी जब दुनिया में आए और मेहनत को किया तो जो लोग कुफ्र और शिर्क की गंदगियों में मुब्तला थे अल्लाह ने उनको कुफ्र और शिर्क की गंदगियों से निकालकर ईमान और अमल के नूर से मुनव्वर किया, ऐसी तासीर है काम में। लेकिन ये तासीर उस वक्त हासिल होगी जब बड़ों की मंशा के मुताबिक काम को काम बनाकर करें। ये मस्जिद जमात हमारे बड़े फरमा रहे, इसके जरिए हमारे बड़े चाहते हैं हमारी मस्जिद मस्जिद नबी का नमूना बन जाए और हमारी बस्तियां मदीनतुल मुनव्वरा का नमूना बन जाए और हमारी हर एक की जिंदगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु के नमूने पर आ जाए। इतनी बड़ी बात मस्जिद और जमात के जरिए चाही जा रही है, अगर हमने इसको एहतमाम पाबंदी के साथ करना शुरू किया तो फिर इससे हमारी भी जिंदगियों में जो है बदलाव आएगा और हमारे मोहल्लों का और हमारी बस्तियों का भी माहौल बढ़ेगा। इसके लिए जो है मामूली नहीं है कि मकामी काम रोजाना फिक्रों में छूना, 2.5 घंटे से 8 घंटे लगाना और मस्जिद की घर की तालीम में शरीक होना और हफ्ते के 2 दिन और महीने के 3 दिन और ये हफ्ता वाली मशवरा, हफ्ता वाली इज्तिमा, महाना जोड़, 2 महाना जोड़ और जो इज्तिमात में शिरकत, ये जितनी भी मेहनतें बताई जा रही हैं ये यूं नहीं है बल्कि इससे एक जो है एक जिंदगी मतलूब है, एक फिक्र मतलूब है कि हम अगर इसको सही फिक्र के साथ करने वाले बने तो फिर ये हमारी अपनी जिंदगियों में और पूरे माशरे में ये जो है माहौल को बदलने का जरिया बनेगा। इसके लिए हमारे बड़ों की तरफ से कुर्बानी का मुतालबा है कि बगैर कुर्बानी के हिदायत वजूद नहीं है, ईमान और आमाल जो है मजबूत नहीं होते। हम बारह सुनते हैं कि ये दिन जो है यूं ही हमारे पास नहीं पहुँच गया बल्कि सहाबा ने इसके कुर्बान की जात मुबारक, नबियों के इमाम इन्होंने अपनी जात से कितनी कुर्बानियां दी दीन को जिंदा करने के लिए कि आपके घरों में 2-2 महीने तक चूल्हे नहीं चले, सहाबा ने बर्तने कटवाए, बीवियों को बेवा किया, इनके घरों के चूल्हे बुझे, पेड़ों पर पत्थर बांधे गए, इतनी सारी कुर्बानियों के बाद ये दिन उन तक पहुंचा है। अरे दीन को हमारी जिंदगी में हकीकत के साथ जिंदा करने के लिए और उम्मत की जिंदगी में जिंदा करने के लिए अगर 4 महीने मांगे जा रहे हैं तो ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। इसके लिए मजमे में वो हजार दिन अब तक 4 महीने नहीं लगे, वो तो हिम्मत करके इजहार करेंगे हम ये 2019 में हम इंशाल्लाह जो है 4 महीने के लिए तैयार है। बताओ इसके लिए 4-4 महीने के लिए कौन तैयार है? इसके बाद भी इंशाल्लाह जमाते बढ़ रही जो इसके बाद जाने वाले वो भी इजहार करें और जिनके अब तक नहीं लगे
करे न करे काम मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है, ये समझते हुए अपनी फिक्र से साथ चलना। महीने के 3 दिन खाली 3 दिन लगाने नहीं बल्कि हमारे साथ जमात बनाना, अपने साथ जमात बनाना। अगर हर साथी इसको तय करेगा तो 27 दिन हमें मेहनत के लिए मिलते हैं। हमारे माशाल्लाह हर मस्जिद में कहीं 5 जमातें, कहीं 6 जमातें, कहीं 7 जमातें मुलाकातों के लिए रोजाना माशाल्लाह मेहनत के लिए निकलते हैं। तो अगर 4 महीने जितने की मुश्किलों के साथ साथ 3 दिन की भी अगर जमात में जब तक मुश्किल है तो हमारी हर मस्जिद से हर हफ्ते जमात की जमातें रवाना हो, इसकी फिक्र करें और इसको तबीयत पर ले अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताला इसको आसान कर देगा। वैसे लिए बना दी इंशाल्लाह।
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.